आयत नंबर 65 से सूरह नहल आज देखेंगे। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ही व नफ़ी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अंज़ला मिनस समाई माअ, और अल्लाह ताला ने उतारा आसमान से पानी को। फअहया बिहिल अर्ध, फिर जिंदा किया इसके साथ जमीन को। बादा मौतिहा, उसकी मौत के बाद। हम जैसे कि गुज़िश्ता अपने सबक में भी पढ़ चुके हैं, जब से सूरह नहल शुरू हुई तो हम देख रहे हैं कि इसमें बार बार अल्लाह ताला अपनी निशानियों को याद दिलाते हैं, अपनी नेमतों को याद दिलाते हैं, और उनसे तौहीद को बयान किया गया कि तुम्हें ये नेमतें देने वाला कौन है। सोचो तो सही, समझो तो सही, इसमें भी तुम्हारे लिए निशानी है। देखिए, निशानी किस लिए होती है? बार बार आयत आता है ना, इन्ना फी ज़ालिकल आया, इन्ना फी ज़ालिकल आया। तो आयत क्या होती है? निशानी। निशानी से आप किसी को याद करते हैं, आप कहते हैं ना ये फलां की निशानी है, वो कोई रिंग है, कोई दुपट्टा है, आपने अपनी किसी प्यारे का रखा हुआ है, आप उसको कहते हैं, उसको देख के आपको असल में वो याद आ जाता है। तो आप कहते हैं ये उसकी फलां की निशानी है। निशानियों से उसकी याद आती है जिसकी वो चीज़ होती है, ऐसे ही है ना। अब देखें कि ये कायनात भरी पड़ी है निशानियों से, और ये किसकी निशानी है? अल्लाह ताला की, जिसने उनको पैदा किया। इन सब चीज़ों को पैदा करने का वो एक सबूत है इस चीज़ का कि हमारे बनाने वाले को समझो, पहचानो, हमें देखो और जानो कि हमारा पैदा करने वाला कैसा होगा, कौन होगा, वो एक होगा या ज्यादा होंगे। तो अल्लाह ताला इस सूरह में बार बार, क्योंकि तौहीद के गिर्द घूम रही है ना ये सूरत, बार बार इन निशानियों से तौहीद को बयान करता है। बार बार अल्लाह ताला इंसान की तवज्जो इस तरफ दिला रहा है कि गौर तो करो, देखो तो सही, समझो तो सही, सोचो तो सही। और ये वो तमाम चीजें हैं जिनको कि आप रोज देखते हैं। ऐसी कोई अचंभा चीज नहीं है कि कोई समुद्र की तहों के अंदर जाकर किसी चीज की एग्जांपल दी गई हो जो कि सबने नहीं देखी हुई। नहीं, ऐसी चीजों से मिसाल दी गई है जो कि रोजाना आप देखते हैं, कहीं आसमान की, कहीं जमीन की, कहीं परिंदों की। आज भी देखें बारिश की, किसने नहीं बारिश देखी हुई? सब बारिश को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन बारिश भी कोई सबक देती है। वो सबक क्या है कि इसको नाजिल करने वाला एक खुदा है। अल्लाह ताला की कुदरत पता चलती है इससे कि इंसान, देखिए बारिश नहीं बरसा सकता, ये रब्बी है, जहां चाहे बारिश बरसाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ने ही नाजिल की है बारिश आसमान से, फिर इसके जरिए जमीन को जिंदा करता है। जिंदा कैसे होती है जमीन? कि वो जमीन जो मुर्दा पड़ी हुई है, बंजर पड़ी हुई है, उसमें भी पौधे निकलने लगते हैं, हरियाली आ जाती है। ये उसकी जिंदगी है, ये उसकी लाइफ है, पादा मौतिया, क्योंकि वो मुर्दा थी। और यहीं से हमें इस तरफ भी इशारा मिलता है कि जैसे बारिश है इसको अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है, इसी तरह एक और बारिश भी है। ये बारिश जो आप देखते हैं ये जमीन पे पड़ती है, एक और बारिश है जो वही की बारिश है, वो मुर्दा दिलों के ऊपर पड़ती है। तो मुर्दा दिल जो होते हैं वो जिंदा हो जाते हैं, उनके अंदर ईमान की हरारत पैदा हो जाती है। तो एक वो बारिश है और एक ये कुरान की बारिश है। आप बताइए, जब तक कुरान नहीं पढ़ा था तो दिल कैसे मुर्दा थे, और जब कुरान पढ़ लिया तो यूं लगता है दिलों को वाकई जिंदगी मिल गई। अल्लाह ताला की बात हक है, वाकई दिल यूं लगता है कि रोशन हो गए, लहलहाने लगे, जैसे जमीन मुर्दगी के बाद जिंदा हो जाती है। इस तरह अल्लाह ताला वही की बारिश से दिलों को जिंदा कर देता है, और अल्लाह के हुक्म से ये बारिश भी नाजिल होती है जिसको हम देखते हैं, अल्लाह ही के हुक्म से वही की बारिश भी नाजिल होती है। हाँ, मगर बाज दिल तो बंजर जमीन से भी ज्यादा सख्त होते, पत्ता के पत्थरों से भी ज्यादा सख्त होते, फिर उनके ऊपर वही की बारिश भी असर नहीं करती। वरना जो आम दिल होता है ना, वो जिंदा हो जाता है। तो अगर दिलों की जिंदगी चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? वही की बारिश में अपने दिल को सैराब कर लेना चाहिए, वही की बारिश के आगे अपने दिल को रख दे। इन्ना फी दालिकल आयत अल कौमी यस्माउन, इसमें निशानी है उस कौम के लिए जो सुनती हो। अब सुनते तो सारे ही, सभी सुनते, काफिर भी सुनते हैं, मोमिन भी सुनता है, कान तो सबको लगेंगे। ये सुनना वो सुनना नहीं है, ये दिल की आंख से दिल के साथ सुनना है। अगर दिल साथ शामिल नहीं तो सिर्फ कानों से सुनना, तो फिर वो तो चौपाए भी सुनते हैं, जानवर भी सुन रहा है। आप देखें कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सब सुन ही रहे हैं ना, लेकिन उनके सामने आप कुरान पढ़ें या उनको जिबा करने की बात करें या आप कोई आफत की बात करें या कोई अच्छी बात करें, उनको कोई भी नहीं फर्क पड़ता। इसी तरह पास इंसान भी होते हैं, वो भी चौपाइयों की तरह सुनते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वला हम आदान ला यस्माउना बिहा, इनके कान हैं लेकिन वो सुनते नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल ना फरमाना जिनके कान हों भी तो सुनते ना। देखिए सूरह मुल्क में है ना कि जब लोग जहन्नुम के अंदर जल रहे होंगे ना, तो वो उस वक्त फरिश्ते को कहेंगे, तुम बदबख्तों यहाँ पे क्यों आ गए, तो तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? तो वो आगे से जवाब देंगे, हाँ आया था लेकिन हमने सुना नहीं, काश हम सुन लेते। सुनने की बात वो भी करेंगे, तो क्या उनके पास कान नहीं थे दुनिया में? क्या वो बहरे थे? नहीं, वो बहरे नहीं थे, उनके पास कान थे लेकिन वो कान से हियर करते थे, लिसन नहीं करते थे। हियरिंग में और लिसनिंग में फर्क होता है। हियरिंग है तो कोई भी आवाज आपके कानों से टकरा के चली जाए, लिसन है कि दिल में जाते, सोच समझ के सुनना। तो जानवरों की तरह ना जिंदगी गुजारे कि देख रहे हैं सुन रहे हैं, लेकिन ना वो देखना किसी काम का ना सुनना किसी काम का। अल्लाह तकूनु कल्लदीना कालू समिअना वहम ला यस्मऊन, अल्लाह तआला ने फरमाया उन लोगों की तरह ना हो जाए जो कहते हैं हमने सुना लेकिन वो सुनते नहीं है, क्योंकि कानों में आवाजें बस टकराती हैं। बहुत से लोगों के आगे कुरान भी पढ़ा जाता है लेकिन बस एक आवाज है जो टकरा रही है, एक लेक्चर है जो हो रहा है, उसके बाद उठते हैं, कपड़े झाड़ते हैं और चले जाते हैं, गोया कुछ सुना ही नहीं। ऐसा सुनना जानवरों का सुनना होता है। इंसान इससे बालातर है कि वो जानवरों की तरह सुने, इससे अबव है इंसान। फिर भी अगर कोई जानवरों जैसे ही सुनने और देखने के अमल को करेगा तो अपने आप को कितना गिरा लेता है एक जानवर की सतह पे। बल्कि आगे बात आएगी कि ये तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं। तो सुनने सुनने में भी फर्क होता है, और हमने कौन सा वाला सुनना है जो दिलो दिमाग के साथ सुनना होता है, ठीक है, जिसमें आप गौर से सुनते हैं। समझ आ गई अब बात कि सुनना कैसे है हमने? नहीं ना हो कि पूरी क्लास खत्म हो जाए और क्या सुना क्या कहा गया कुछ पता ही नहीं। वह इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा, बेशक तुम्हारे लिए चौपाइयों में भी इबरत है। इबरत जानते हैं किस चीज को कहते हैं? इबरत वो चीज होती है कि जिससे फायदा उठा के ना इंसान तजर्बे के बगैर ही गलती से बच जाता है। हम कहते हैं ना इबरत हासिल करो इससे, यानी अब आप ये वाली मिस्टेक दोहरा के और ये इसी अंजाम को ना पहुंचे, बल्कि आप इससे ही लर्न कर ले, दूसरे के तजर्बे से आप लर्न कर ले। इनमें भी इबरत है, इनमें भी इंसान के लिए सबक है, इनमें भी इंसान के लिए कोई मैसेज है। और देखिए अल्लाह ताला आम फहम बात, यानी जो बातें सबको समझ आ जाती हैं उनसे मिसालें दे रहा है। आम कौन से होते हैं? मवेशी जानवर, ऊंट, गाय, बकरी, भेड़, इनको अनआम कहते हैं। जैसे हम सूरतुल अनआम पढ़ भी चुके हैं, इनमें भी बहुत सारी निशानी है, मगर एक निशानी की तरफ यहाँ पे गौर हमें करने की दावत दी गई है। पहले हमने और भी निशानियां पढ़ी है ना, कि इनमें तुम्हारे लिए बहुत सारे फायदे हैं, इनकी ऊन में, इनके बालों में, इनके चमड़े में, इनके गोश्त और इनके जो इनसे फवायद हैं, जो इन सब सवारियां तुम करते हो, इसमें बड़ा सबक है। ठीक है, आज एक और चीज की तरफ इशारा किया गया कि देखो, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनी ही, हम पिलाती हैं उसमें से जो उनके पेटों में है। यानी आप बकरी, भेड़, इनके भी दूध होते हैं, ऊंटनी का भी दूध होता है, गाय का दूध तो पीते ही हैं। तो चलिए हम गाय की तरफ बात करते हैं, क्योंकि उसका सबको समझ है। अल्लाह ताला फरमाता है, कौन पिलाता है उससे दूध? हम पिलाते हैं उसके पेट से, मिम बैनी फर्स वदमिन, फर्स के, गोबर के और खून के दरमियान में से। क्या चीज? लबनन खालिसन, लबन दूध, खालिस साइगन लिशारबीन, खुशगवार है पीने वालों के लिए। कैसे? इनके पेटों में देखिए, गोबर भी वही है, खून भी वही है, लेकिन उनके बीच से एक ऐसा दूध निकल रहा है जो खालिस दूध है। उसमें जरा सी भी आमेजिश नहीं, जरा सा भी असर नहीं, ना रंग में, ना जायके में, ना खुशबू में, क्योंकि गोबर की स्मेल आ रही हो। हालांकि पेट तो एक ही है ना, पेट तो एक ही है ना, उसी पेट के अंदर गोबर भी है उसके और खून भी अंदर ही है। अब गोबर की कितनी स्मेल होती है, आप इनके बाड़े में चले जाएं कितनी स्मेल आती है, लेकिन दूध आप निकालते हैं उसमें स्मेल नहीं, खून का एक कतरा भी शामिल नहीं, दूध बिल्कुल साफ सफेद, उसमें पिंक भी नहीं है कि चलो एक दो कतरे खून के भी अंदर शामिल हो गए। ये कौन तुम्हें पिलाता है? ये अल्लाह पिलाता है। ये फैक्ट्रियां कहाँ लगी हुई हैं? इस पेट में। येट ये हाल है कि आप जिबा करें जानवरों को तो दूध नहीं निकल आता अंदर से, गोश्त तो निकलेगा, खून निकलेगा, मगर दूध तो उसकी उसका गैलन नहीं निकल आएगा। कहाँ से आता है ये दूध? अल्लाह ताला फरमाता है, नुस्की कुम, हम पिलाते हैं तुमको। तुम अगर ऐसी फैक्ट्री बनाना चाहो तो जमीन पर कितने एकड़ जमीन लेनी पड़ेगी, कितनी मशीनरियां लगानी पड़ेंगी, बिजली चाहिए होगी, कितनी लेबर चाहिए होगी, तब जाके कहीं ये दूध की पैदावार होगी। कितना फिर आप देखें, जिसको कहते हैं रॉ मटेरियल, कितना चाहिए होगा, तो तब कहीं जाके वो भी इस खासियत का दूध नहीं बनेगा। आज डब्बे के दूध बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी वो बात नहीं। आप देख लें आपकी किस तरह अल्लाह ताला पिलाता है, कितनी गजाइत है, कि दूध जो है मुकम्मल डाइट है। आप इस फैक्ट्री को तुम देखते हो, चलती फिरती फैक्ट्री जिससे फ्रेश दूध निकाल लेते हो आप, वरना दूध को देखें आपने कहीं रखना हो बाहर ऐसे पड़ा हुआ हो तो एक दिन में खराब हो जाए, लेकिन चलती फिरती फैक्ट्री से उसी वक्त निकाल लो, उसी वक्त आप जिस वक्त चाहो फ्रेश निकाल के आपके सामने आ जाए। कौन सी कोल्ड स्टोरेज में अंदर पड़ा हुआ है? कौन सा फ्रिज है गाय के पेट के अंदर जिसमें वो रखा हुआ है? तुम सोचते नहीं। तुम इससे मिलने वाले फायदों को तो बड़ा एंजॉय करते हो, बड़ा मजा आ रहा है दूध पीने से, दूध को मतलब हमारे लिए कितनी गजाइत है उसके ऊपर तो बड़ी बातें होती हैं, इसमें इतनी ये कैल्शियम है, इसमें ये वाइटामिन है, इसमें ये, इस पे भी बात कर देते हैं, बोन्स के लिए कैसा है इसके लिए। लेकिन क्या कभी सोचा ये आता कहाँ से? कौन इसको देता है? हमारे लिए किसने इस जानवर को ऐसा बना दिया कि ये हमारे लिए कितने गैलन दूध ला रहा है? कहते हैं 8 गैलन दूध गाय के थनों में भर जाता है एक दफा में, और वो खाती क्या है? चारा, चारा जो बाहर जाके वो ग्रेस करती है, खेतों में, किरयानों में जाके खा लेती है। आज भी अगर लाके भी डालना पड़े चारा तब भी बहुत सस्ता है। और दूध की गजाइयत देखें, क्या चारे में वो गजाइयत है, क्या चारे में वो टेस्ट है जो दूध का है? फिर कैसे बन जाता है उस घास फूस से ऐसा दूध, कैसे बन जाता है जो इंसान के लिए इतनी जबरदस्त गजा है? और फिर देखें, चारा खाया उससे एक तरफ वेस्ट बना, एक तरफ गाय के लिए एनर्जी का सामान हुआ, और फिर तीसरा दूध बन गया जो उसके बच्चे के लिए भी काफी है और दूसरे बहुत सारे लोगों के लिए भी काफी है। ऐसा दूध इंसान बना सकता है क्या? पाउडर मिल्क बनाई है लोगों ने, लेकिन क्या ऐसी गजाइयत वाला बना सकता है? जो पाउडर मिल्क भी बनाते हैं वो क्लेम करते हैं कि ये उसका ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, इससे सोचते नहीं हो तुम? समझ नहीं आती इससे, कभी गौर नहीं करते? और फिर इसका पीना कितना खुशगवार है, कितना लजीज है, कितना फायदेमंद है, और आसानी से अलग से उतर जाने वाला है। यानी बाज दफा ऐसे होता है ना कि बाज लोग कुछ खा नहीं सकते, तो दूध उनको पिला दिया जाए तो मुकम्मल गजा उसको मिल गई, अलग से नीचे आराम से उतर जाने वाला है। किसी से इखलास के बारे में पूछा गया तो फरमाया, किसी अमल को ऐबों से पाक रखना, उसको खालिस करना है, जैसे दूध जो है गोबर और खून से पाक होके खालिस होके निकलता है। तो देखिए, इसी तरह अमलों को भी गंदगियों से पाक रखना है, ऐसे ही जैसे अल्लाह ताला गाय से दूध कैसे निकालता है। और इसकी खास सिफत जो बताई गई, देखो कैसे आराम से अलग से उतर जाता है, इसमें भी फायदा है इंसान का, पीने में कोई मुश्किल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध को पसंद फरमाते थे, जब आपके लिए दूध पेश किया जाता था तो आप उसको जरूर नोश फरमाते थे। उम्मे फजल ने अरफा के दिन ये देखने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा है या नहीं है, तो दूध का प्याला पेश किया था कि अगर रोजा नहीं होगा तो दूध को कभी ना नहीं करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध का प्याला लिया था और सबके सामने पिया था, तो पता चल गया कि अरफा के दिन हाजी रोजा ना रखे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीते थे तो दुआ करते थे, अल्लाह मुबारक लना फी वजिदना मिन, यानी दूध के लिए स्पेशल अलग से दुआ है, बाकी चीजों के लिए तो वैसे ही दुआ है, लेकिन दूध के लिए ये वाली खास दुआ है। इससे आप दूध की अफादियत का अंदाजा लगाइए। फिर आप देखें, इसमें बड़ा ही जबरदस्त एक बात है कि माहौल कैसा भी हो, माहौल में गंदगियां हैं, इधर गोबर है उधर खून है, लेकिन इंसान को ऐसे ही खालिस रहना है जैसे दूध है। इंसान को उसके साथ अपने आप को लुथेड़ना नहीं है जो माहौल है इर्द गिर्द का, बल्कि अपने रब के लिए अपने आप को खालिस रखना, अपने अमल को भी खालिस रखना, अपने किरदार को, अपने अखलाक को, इधर उधर की गंदगियों में अपने आप को नहीं डालना। इर्द गिर्द चाहे माहौल कैसा भी हो, ये नहीं कि जैसा माहौल वैसे ही चल पड़े, जैसे इर्द गिर्द की फिजा है हम भी वैसे ही हो गए, नहीं। अगर ऐसा होता तो आपको कभी दूध खालिस ना मिलता। तो अल्लाह ताला ऐसा कर सकता है, खालिस दूध निकाल दे दरमियान गोबर और खून के। हम अल्लाह ताला से दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे माहौल से जो गंदगियों का माहौल है, हर तरफ बेहयाई, हर तरफ गुनाह, हर तरफ बेईमानी, उस माहौल में कुफर और शिर्क के माहौल में अल्लाह तो हमें ऐसे खालिस बना देना जैसे तू दूध को खालिस करके निकाल देता है। और इसी में एक और सबक भी बहुत प्यारा सबक है, और वो ये कि देखें, गोबर और खून के दरमियान से ही निकल रहा है ना दूध, ऐसी चीज निकल रही है। तो जब हालात भी बुरे हों, ना मुवाफिक हों, उसके अंदर से भी अगर अल्लाह चाहे तो मुवाफिक हालात पैदा कर सकता है। इसमें कितना होप है ना, कि इंसान ये ना सोचे कि अगर मैं घिर गया हूं मुश्किल हालात के अंदर और कोई वे आउट नहीं निकल रहा, तो दूध से सबक लें कि देखिए अल्लाह ताला जब दूध निकाल सकता है गोबर और खून के दरमियान से, अल्लाह ताला इस पर कादिर है तो मेरे लिए भी तो ऐसा रास्ता निकाल सकता है जो नामुआफिक हालात में बगैर किसी नामुआफिक हालात की आमेजिश के, बगैर किसी ऐसी चीज के जो कि मेरे लिए तंगी वाली हो, उसके बगैर मेरे लिए भी तो आसानी के रास्ते निकाल सकता है। और अल्लाह ताला से हम इसी तरह दुआएं भी मांग सकते हैं कि अल्लाह तू तो वो है जो फर्श और दम के दरमियान से लबनन खालिसन निकालता है, अल्लाह मेरे भी इन नामुनासिब हालात मुश्किल हालात में से आसानी निकाल दे, मुआफिक हालात निकाल दे। तो और इसी तरह ऐसे माहौल के अंदर से मुझे खालिस बना के उठा लेना, तो अल्लाह चाहे तो ऐसा कर सकता है। इंसान तो गौर व फिक्र करे ना तो इनके अंदर बड़ी एक सबक है, और अल्लाह ताला चाहे तो मेरी वेस्ट सी जिंदगी उसमें भी रमक पैदा कर सकता है, जैसे वो एक वेस्ट में से दूध निकाल सकता है, इस तरह मेरी बेकार जिंदगी को भी कारामत बना सकता है, इसी बेकार कोई ऐसा बना सकता है, इसी में से ऐसा मुझे खालिस करके निकाल सकता है। वमिन समरात नखी, और भी निशानी है, और अगली निशानी क्या है, वमिन समरात और फलों में से, अन्नखील खजूर के, वलाना बरंगूर के, तत्तखिज़ूना मिन्हु सकरन व रिज़्क़न हसन, इसमें से तुम निकालते हो नशावर चीज और अच्छा रिस्क भी। यानी फलों की मिसाल अब देख के बताया गया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए फल भी पैदा किए, और दो फलों का सिर्फ जिक्र किया गया, क्यों, फल तो और भी बहुत से हैं मगर जिनको अरब जानते पहचानते थे और इनको यूज करते थे बहुत ज्यादा, खजूर के ऊपर तो उनकी पूरे यानी पूरा एक मील ही हो जाता था उनके लिए, खजूर आपको पता है कितनी कॉमन आज भी अरब में है। तो उनको समझाया गया कि देखो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने कैसे फल पैदा किए हैं, एक खजूर वो जो मुकम्मल डाइट है, खजूर खा लें तो ना काफी है इंसान के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई दफा कुछ भी नहीं होता था, खजूर के और पानी के ऊपर ही गुजारा करते थे कई कई दिन मुसलसल, तो इसका मतलब आप सरवाइव कर सकते हैं सिर्फ खजूर खा के भी। और अंगूर, और इसमें से खास तौर पे नशे की चीजें बनाते थे, शराब वो लोग बनाते थे इस टाइम तक, अभी जब ये आयात नाजिल हुई तो शराब हराम नहीं हुई थी, अभी उसके हुरमत का हुक्म नहीं आया था, मगर देखें अब यहाँ पर एक इशारा, लतीफ सा इशारा है कि सक्कर को रिज़्क़न हसना से अलग किया गया, समझ जाए, एक सक्कर बनाते और रिज़्क़न हसना को अलग से मेंशन किया गया, इसका मतलब सक्कर रिज़्क़न हसना नहीं है, अच्छा रिस्क नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। तो तुम इससे बहुत सी चीजें जहां बनाते हो वहां पर नशे की चीज भी बनाते हो और अच्छा रिस्क भी बनाते हो, तो इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए फायदे रखे, इन फलों के अंदर भी फायदे रखे तुम लोगों के लिए, और खास तौर पे इन दो से ये चीजें बनती हैं। और आप देखें अंगूर भी बड़ा फायदेमंद, इसको सुखा के भी यूज किया जाता है, इसके शरबत भी बनाया जाता है, इसको ऐसे भी खाया जाता है, इसमें भी बड़ी अफादियत है, खजूर को भी खुश्क खजूर भी खाई जाती है, तर भी खाई जाती है, कई कई दिन तक ये इंसान के पास सेव रह सकती है, खराब नहीं होती, आप वैसे भी रख छोड़े तो खराब नहीं होती, कोई जरूरी नहीं कि फ्रिज में ही रखना जरूरी है। तो इन फलों में बड़े फायदे हैं, तो इंसान जब फलों को देखता है तो बस उनके मजे के ऊपर बात करता है, ये फलां जगह का की खजूर है, ये फलां जगह का अंगूर है, और इन जायकों में बात करता है, ये नहीं कभी सोचता कि किसने मिट्टी को बदल दिया खजूर में, मिट्टी और पानी को बदल दिया अंगूर में, जो पानी डाला था ना वो मीठा था, उसमें कोई मिठास नहीं थी ना मिट्टी के अंदर कोई मिठास थी, उससे कैसे ऐसे खजूर और ऐसे अंगूर निकल आए, सोचा कभी आपने? देखिए मट्टी है ना, उसके अंदर पौधा लगाया, आप उसको बस पानी ही देते हैं और क्या देते हैं, उसके ऊपर खजूर उग जानी जो इतनी मीठी है, कभी आपने नहीं देखा होगा फीकी खजूर कोई कहे, मिठास फुल ऑफ एनर्जी, अंगूर भी मीठे। तो कैसे ये बन गया, किसने ये निजाम चलाया? इंसान इन चीजों पे गौर करे। इन्ना फी दालिक ला आया तल्ले कौमी याकिलून, इसमें एक निशानी है उस कौम के लिए जो अकल रखती है। तो सकर जो है ना, नशावर चीज, हर नशार चीज को फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो खमर है, और हर खमर हराम है। और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस चीज की कसीर मकदार नशा करती है, वो उसकी कलील मकदार भी हराम है। ये नहीं आप कह सकते वो हम तो थोड़ी सी पीते हैं, थोड़ी सी जिससे नशा ना हो, नहीं, थोड़ी भी हराम। और रिस्क हसन में सब वो खाने पीने के जो इस्तेमाल की चीजें जो जायज हैं, वो सब इसमें आ गई, जिसमें से भी आप न्यूट्रिशन लेते हैं, जो भी एनर्जी देती हैं जिस्म और अकल दोनों के लिए। और फरमाया, देखें पिछले में भी फरमाया इसमें निशानी है, अब भी फरमाया इसमें निशानी है, लेकिन कुछ खास लोगों को मेंशन किया जाता है, कहीं आया जो सुनते हैं, कहीं आया जो अकल रखते हैं। इससे हमें क्या समझ आती है? इसका मतलब हर एक नहीं इससे निशानी लेता, हर एक इससे बात को नहीं समझता, कोई खास लोग हैं जो समझते हैं, और भी कुछ बात समझ आती, सोचें क्या समझ आता हमें ना। अपने जहन को इस्तेमाल करना चाहिए कुरान में गौर फिक्र करने के लिए, ठीक है? अभी मैं आपको बताऊंगी, आप खुद अभी सोचेंगे क्या समझ आई इससे। इन्ना फी ज़ालिक लआयत लिक़ौमी याक़िलून, लिक़ौमी यस्मऊन, कहीं लिक़ौमी युमिनून, ठीक है? वअवहा रब्बुक इलन नहल, अब यहीं से इस सूरत का नाम सूरत नहल है, वही की तेरे रब ने शहद की मक्खी की तरह। ये कौन सी वही है? एक देखिए वही तो वो है जो पैगंबरों के ऊपर आती है, और एक अल्लाह ताला एक जरिए से यानी किसी फरिश्ते को भेजता है, या पर्दे के पीछे से कलाम फरमाता है, या दिल में बात डालता है, वो वही है जिस जो किसी नबी के ऊपर आती है। और एक वही है जिस जिस जो उसका डिक्शनरी मीनिंग है, यानी दिल में बात डाल देना, इल्हाम कर देना, खुफिया इशारा। तो ये वाली वो वही नहीं है जो नबियों के ऊपर आती है, ये वो वही है जो इंसान या किसी भी मखलूक की फितरत में अल्लाह ताला ने बात डाल दी होती है, उसको वही कहा जाता है। इल्हाम कर दिया उसको, उसके दिल में डाल दी है, उसकी नेचर में डाल दी है ये बात, ठीक है? और अल्लाह ताला ने जिसके अंदर जो चीज वही कर दी है, वो उसी के मुताबिक काम करता है। जैसे शहद की मक्खी के अंदर क्या बात डाल दी है, अनित्तखिदी, के तुम बनाओ क्या, मीनल जिबाली, पहाड़ों में से, बुयूतन घर, व मीन शजरी, और दरख्तों में घर, व मीमा यारिशून, और उनमें जो चढ़ाते हैं वो उनके अंदर घर बनाओ। यानी अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को ये बात इल्हाम कर दी, उसके दिल में डाल दी कि वो पहाड़ों में और दरख्तों में और ऊंचे छप्परों में घर बनाए। तो ये इनका जो घर है ना, वो भी एक बहुत ही अजीबो गरीब सी चीज है, जो शहद की मक्खी का छत्ता होता है, ये इतना ज्यादा एक हैरान कुन बात है, क्योंकि आप देखें कि इतना एक्यूरेट है वो, इस कदर उसकी मेजरमेंट हर तरफ से, सिक्स साइड्स वाला एक वो बनाती है ना घर, जो उसके छत्ते के अंदर वो जो खाने होते हैं, उस सिक्स साइड्स के हेक्सागोन होते हैं, मुसद्दस जिसको कहते हैं। तो इंसान उन पे गौर करें तो अकल दंग रह जाए। आप कोई कंपस नहीं है, कोई रूलर नहीं है, उसके बगैर कोई मेजरिंग टेप नहीं है, उसके बगैर कैसे सारे खाने बराबर
जरा भी इधर उधर नहीं है। इन्होंने कहीं सीखा है क्या? कोई मैथ पढ़ा है? कोई क्लासें ली हैं? किसने इनको सिखाया? किसने इनको बताया ऐसे बनाना है घर, और इतना एक्यूरेट घर? इंसान भी किसी का कपड़ा भी सीता है ना, तो उसकी भी नापता है, इधर से नापता है, उधर से कोई मेजरिंग टेप रखनी पड़ती है। आपको कहें कि आप ड्रॉ ही करें ना, 6 साइड्स वाला एक खाना, तो आप रूलर पकड़ेंगे, इधर से सीधा करेंगे, इधर इंच इतना, इधर इंच इतना, इस तरह से करके आप बनाएंगे। हाथ से आपसे वैसे रफली नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इनको किसने सिखाया? कभी सोचते हो तो? ये बड़ा पहाड़ों पे ऊंची वहां पे जाके घर बनाती हैं, दरख्तों पे इनके छत्ते होते हैं, कौन सिखा रहा है इनको? कोई तो है जिसने वही किया हुआ इनके दिल में। और फिर देखिए, अजीबो गरीब से घर, ऐसे घर के जिनका मटेरियल कहाँ से आया, उसे कभी सोचा आपने? ऐसे घर जिसके खाने, उनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है, और इतनी डेडिकेशन के साथ बन रहा है, इतना ऑर्गेनाइज्ड वर्क हो रहा है, कैसे मिल मिल के काम कर रही है। एक कॉलोनी इसमें रहती है, अकेली अकेली नहीं, आप देखेंगे शायद कि मक्खी एक अकेली अपना घर बना के बैठी, कॉलोनी इसमें रहती है, थाउजेंड्स ऑफ देम एक छत्ते पे होती है। और किस तरह वो उस छत्ते को बनाती है, ऊपर से भी बना रही थी, नीचे की तरफ भी बना रही थी, ऊपर भी कतारें चल रही थी, नीचे को भी जा रही थी, जबरदस्त तरीके से और बाकायदगी से साथ, और इतनी कॉपरेशन के साथ। हमें इतना बड़ा सबक है ना, एक चींटियों की, सूरह नमल भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी, एक चींटियों की कॉलोनीज का। आप कभी ये देखिए ना, इन चीजों को भी कभी गूगल किया करें, रिसर्च इस पे किया करें, हनी बीज कैसे काम करती है, हनी बीज के कैसे होता है, अक्ल आपकी हैरान रह जाएगी कि यार इनको इतनी अकल है। मैंने इसके ऊपर सारी ही रिसर्च की थी, तो थोड़ी 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 आपको बातें बता देती हूँ। इतना टाइम नहीं होता कि आपको मैं डिटेल में करूँ, आप खुद जाके भी देख सकते हैं कैसे ये अपनी क्वीन बी को चूज करती हैं, कैसे ये काम करती हैं, आगे बात आएगी, कैसे ये अपने छत्ते बनाती हैं, कैसे ये उड़ उड़ के जाती हैं फलों का रस चूसने के लिए, और इनके छत्ते कितने एक्यूरेट होते हैं, कितना बाकायदगी से काम करती हैं, कितनी कॉपरेशन होती है आपस में। हमें 4 लोगों को बिठा दो, एक मुंह उधर कर लेगा, एक उधर कर देगा, वो उससे नाराज, तुम ऐसे नहीं, तुम वो, तुम इसके साथ नहीं मैंने काम करना, वो मेरी बात नहीं सुनती, वो इस तरह करती है, मिजाज ही नहीं मिलते, चाहे अल्लाह के रास्ते का ही काम कर ले। अब उस हमने हम इसके साथ चल नहीं सकते, ये नहीं देखते कि हमारा काम अहम है, ये देखते हैं कि हम किसके साथ चलें, जो मेरी दोस्त है, जिसके साथ मेरी बनती है, उसके साथ ही मैंने काम करना, चाहे वो किसी काम के काबिल ना हो, कोई और है हो सकता है जो बेहतर काम कर रहा है, लेकिन मेरी चूंकि उसके साथ नहीं बनती, या मेरा तो दिमाग इसके साथ नहीं मिलता, तो लिहाजा मैं इसके साथ तो काम ही नहीं करूंगी। हमारे अंदर वो कॉपरेशन नहीं है, हमारे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है, इतना डिसिप्लिन इनके अंदर। अगर वो भी एक दूसरे से लड़ने मरने पे ही आ जाए तो आपस में ही लड़ती रहे, एक दूसरे को मार दें लड़ लड़ के। कोई देखा है आपने कि लड़ी पड़ी हो वहां पे, मरी पड़ी हो, इनकी जंग हो रही हो? क्यों नहीं होती? वो भी तो कॉलोनी में रहती हैं, क्यों नहीं लड़ती एक दूसरे से? कैसे काम के लिए डेडिकेटेड जब कोई हो जाता है ना, तो फिर इन चीजों से वो ऊपर उठ जाता है। डेडिकेशन उनकी उनके काम के साथ है, भागी फिरती हैं, वो उधर रस चूस रही हैं, इधर आके हनी बना रही हैं, क्या कर, उनको ये नहीं कि हम आपस में लड़े, उनका काम जो है वो अहम है। और हैरान है साइंसदान भी कि कोई कोई नुक्स ही नहीं है छतों में, किसी छत्ते को भी देख ले उठा के, इनको किस तरह इतना पता चला, ये कैसे इतनी तेजी से वो बनाती है, ये ऐसी तेजी से बनाती है, आपको यही नहीं पता चलेगा शुरू कहाँ से हुआ था, ये स्टार्ट कहाँ से था इसका, इतनी लाइंस इनकी स्ट्रेट कैसे हैं, इतने एंगल्स कैसे एक्यूरेट है, और इतनी सारी लगी हुई है। कोई दूसरे के ऊपर मलामत नहीं, कोई दूसरे को कुछ कह नहीं रही, तो इसमें इंसान के लिए बड़ी इबरत की बातें। छोटे छोटे जानवरों में भी, इतना सा जानवर है, उसमें भी इबरा है। आप देखिए ना, इंसान को एक जानवर से ही सिखाया गया कि तुम और कुछ नहीं तो एक जानवर से ही सीख लो। अगर इंसान को कहीं और नहीं समझ आती, एक जानवर इनाफ है कि उससे इंसान अपने लिए सबक ले ले।